अभी हाल ही में आपकी एक और किताब जिसका जो जिसकी रूनुमाई अभी उर्दू आदमी कॉन्फ्रेंस में हुई थी दास्तान गोई के हवाले से, मीर बाकर अली दास्तान गो, तो ये आप हमें बताइए कि दास्तान गोई की तरफ आपकी दिलचस्पी कैसे हुई और उस किताब में आपने क्या लिखा है?
ये असल में आपको आपके इन होगा कि पिछले 8-10 साल से दिल्ली से रिवाइवल हुआ दास्तान गोई के फन का। तो दास्तान गोई, जैसे कि आपके इल्म है कि 18वीं सदी में 19वीं सदी में मुख्तलिफ दास्तान गो होते थे और वो मुख्तलिफ महफिलों में बादशाहों के दरबारों में, नवाबों के दरबारों में दास्तान गोई करते थे और वो अमीर हमजा की दास्तान है जो सुनाई जाती है, वो थे मीर बाकर अली दास्तान गो, जिनका इंतकाल 1928 में हुआ। और उसके बाद भी समझिए कि ये फन जो है वो बिल्कुल नापैद हो गया और कोई मतलब सिर्फ किताबों के अब तक रह गया कि हाँ जो ये फन था जिसमें तो एक दास्तान गो होता था वो दास्तान में सुनाया करता था। 2006 में शमसुर रहमान फारूकी जो हमारे उर्दू के बहुत बड़े नकाद हैं,
जी
अपने खानजे महमूद फारूकी और एक दोस्त दानिश हुसैन को आमादा किया, तो थिएटर से वाबस्ता थे कि आप अपने थिएटर की जो सलाहियत है उसको बतौर कार लाते हुए दास्तान गोई का सिलसिला शुरू करें। तो एक चैलेंज के तौर पर उन्होंने कबूल किया दोनों ने और उसको इस सिलसिले को शुरू किया जो बहुत मकबूल हुआ। और महमूद फारूकी और दानिश हुसैन जो है न सिर्फ दिल्ली बल्कि हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और दुनिया भर में वो बुलाए जाते रहे और वहां पर उन्होंने ये दास्तान गोई का मुजाहरा किया। कराची भी वो कई दफा आए, यहाँ पे मुझे सुनने का इतफाक हुआ, इस्लामाबाद में सुनने का इतफाक हुआ उनसे, फिर जाती तौर से गरीब मुलाकात रही उनसे। एक बिल्कुल शहर की तरह उन्होंने जैसे जादू कर देता है, तो उससे फिर ऐसे ये हुआ कि इस फन के बारे में मजीद तफसीलात जमा की गई और जो चीजें गुम हो गई है तारीख में उनको अच्छे नौ सामने लाया जाए। तो ये मीर बाकर अली आखिरी आदमी के जैसे मैंने बयान किया 1928 में उनकी डेथ हुई थी, तो जो लोग उस वक्त जिंदा थे उनमें से कई लोगों ने उनके खाके लिखे थे, जैसे अशरफ सदूही ने, मुल्ला वाहिदी ने, शाहिद अहमद दहलवी ने, वो खाके मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद थे। वो खाके पहले एक सोचा किया कि खाकों का एक मजमुआ शायद कर दिया जाए जो उनके बारे में है, लेकिन मीनवाइल मुझे फिर कुछ लाइब्रेरियों में जाने का इतफाक हुआ और वहां पर मुझे कुछ दास्तान उनकी मीर बाकर अली खुद भी लिखकर, वो सिर्फ अमीर हमजा नहीं सुनाते थे, ये तेरे खुशबा नहीं सुनाते थे, बल्कि खुद भी उन्होंने बहुत सारे 17 दास्तान उनकी छपी थी लिखी हुई, उसमें से समझिए कि 7 दास्तान मुकम्मल और 3 दास्तानों के, वो 3 दास्तान भी मुकम्मल है लेकिन वो बहुत छोटी छोटी है, 2-3 दिन है और बाकी दास्तानें जो थी वो तवील थी। एक दास्तान उनकी 1960 में कराची से भी छपी थी, खलील खान फाख्ता नाम था उसका, तो ये सारी दास्तानें बाम हो गई मुख्तलिफ जगहों से। फिर दास्तान गोई के बारे में दो मजामी, एक महेश्वर दयाल ने हिंदुस्तान के मुआफिक है उनका लिखा हुआ और एक शाहिद अहमद दहलवी का दास्तान गोई के फन के बारे में दो मजामी मिल गए। और फिर कुछ ये जो रिवाइवल हुआ है 2006-07 वगैरह में, तो कुछ महमूद फारूकी का इंटरव्यू, दानिश हुसैन का इंटरव्यू और ये के खुद उन्होंने भी 1-2 दास्तान खुद लिखी, तबादात है उनकी, तो 1 दास्तान उनकी भी लिखी हुई मैंने अपनी इस किताब में शामिल कर ली। ये किताब कराची से शाये हुई है और अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान में छापी है, और बल्कि सही बात यह है कि अगर वो लोग इतने दिलचस्पी नहीं लेते और वो मुझे इतने ज्यादा मोटिवेट नहीं करते तो ये शायद किताब अभी भी कंप्यूटर नहीं होती।
और ये अवेलेबल है आम कुतुब खानों पर?
जी, आम उर्दू बाजार वगैरह की दुकानें हैं पर अवेलेबल।
अकील भाई, आपकी जो शख्सियत है वो कुलियतन हमा जहती शख्सियत है। अब मैं आपकी शख्सियत के एक और पहलू की तरफ आना चाहूंगा और वो है आपकी शायरी। आपने हल्का अरबाब ज़ौक को भी जारी रखा हुआ है, आप उसके रूहे रवा हैं और एक साहिब तर्ज शायर भी हैं, तो इस हवाले से आप बताइए कि इतनी सारी चीजें और इतने सारे शौक आप कैसे मैनेज कर लेते हैं और शायरी से आपका लगाव किस हद तक है?
थोड़ा सा तारुफ करा दूंगा, ये इदारा जो है कोई 75-76 साल पुराना इदारा है और 1939 में ये टाइम होता है, 75 साल इसको इस साल मुकम्मल हुआ और ये लाहौर में दुनियाई दौर का टाइम हुआ था, फिर रफ्तार रफ्तार पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में इसकी शाखें टाइम हुई और फिर इंग्लैंड में भी इसकी ब्रांचेज हैं, ऑस्ट्रेलिया में, इधर अमेरिका में, खलीज ममालिक में, सऊदी अरब में, हर जगह पर इसकी शाखें हैं। لیکن بدقسمتی کے بات یہ تھی کہ کراچی میں اس کی کوئی برانچ نہیں. پہلے حلقہ ارباب ذوق کراچی 48 میں بنا تھا جو 76 تک ایکٹیو رہا, لیکن اس کا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں. بس اب لوگ جو ہمارے سینئر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بنارس میں سیکرٹری تھا. ایک طرح سے 76 کے بعد سے حلقہ کراچی میں ایکٹیو ہو چکا تھا. تو جب یہاں پہ کراچی میں آیا ہوں تو مجھ سے منشا یاد صاحب نے اور جو وہاں کے سیکرٹری تھے اسلام آباد کے مجھے نقوی صاحب اور خود لاہور کے سیکرٹری وغیرہ جو تھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ کراچی میں آپ تو حلقے کا سارا سسٹم سمجھتے ہیں, سارا مزاج جانتے ہیں, تو آپ کراچی میں اس کی ڈاک بینک کریں گے. تو یوں میں سمجھیے اکتوبر 2011 میں کراچی میں انکار واضح کو سائن کیا. مجھے مطلب مرکز کی طرف سے مجھے سیکرٹری نامنیٹ کیا گیا حلقے کا. تو ایک سال تو میں نے نامنیٹڈ سیکرٹری کے طور پہ کام کیا, پھر دو سال میں سیکرٹری بہت انتخابات کے ذریعے منتخب ہوا. کیونکہ ہمارے یہاں ممبر شپ ہوتی ہے حلقہ واضح میں اور ممبر شپ کی بھی تھوڑی سی کڑی شرائط ہیں.
مجھے ذاتی طور پر بھی ایک دفعہ اس میں شریک ہونے کا تجربہ ہے اور میرا تجربہ بڑا خوشگوار ہے. اچھا اب بہت سی آپ سے باتیں ہوئی عقیل بھائی, میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کچھ دو چار شعر ہمیں عطا کریں ہمارے سننے والوں کو.
جو مجھے شعر یاد آتے ہیں وہ تو فوراً میں سنا دیتا ہوں آپ کو. زندگی کیا ہے, سفر مٹی کا ہے, اور دنیا کیا ہے, گھر مٹی کا ہے.
واہ.
اور زندگی میں ایک محبت کے سوا جو بھی کچھ ہے سر بسر
مٹی کا ہے. جی جی.
تھا کبھی خون کا حوالہ موت پر.
جی.
تھا کبھی خون کا حوالہ موت پر, اب حوالہ موت پر مٹی کا ہے. اس خرابے میں ہے جو بھی کچھ اپیل, خوبصورت ہے مگر مٹی.
مگر مٹی کا ہے. بہت اچھے عقیل بھائی, اب میں ویلیو ورسٹی کی جانب سے آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں اور بہت ولولہ انگیز باتیں, اور میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے سننے والے ضرور اس سے استفادہ کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.
اچھی بہت بہت شکریہ.